प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पत्रस की पहली पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है दुखों के मध्य आशा। श्रोताओ, हमें उम्मीद है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो चलिए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित होते हैं, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से पहले पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे, जिसमें हमें पत्रस ने बताया कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याचकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। जी हाँ, और तब हमने यह भी देखा कि उसने कहा तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर अब दया हुई है, इसलिए सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो। लोग जो तुम्हारे कुकर्मों के लिए बदनाम करते थे, वे तुम्हें देखकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम भले कामों द्वारा लोगों को अज्ञानता की बातों को बंद कर दें। अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए काम में मत लो, सबका आदर करो और भाइयों के से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और उसकी निकटता में रहो। तो मेरे प्रियो, हमने इन बातों को देखा था और आज हम अपने अध्ययन में उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं और पहले पत्रस की पत्री से और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों पर अपनी कृपा दृष्टि करें, उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनके हृदयों को कायल करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, ताकि हर एक जीवन आप में आनंदित हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार अवस्था में है, आपके वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं। आप उनके हृदय को छुएं, उनसे बोलें और बातचीत करें, उन्हें शांति और धैर्य दें, उन्हें चंगाई और छुटकारा दें जो किसी न किसी रूप में परेशान हैं, निराश हैं, तनाव में हैं। आप उनके भी सुधि लें। आज हम सब से आप बोलें और बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 19 और 20 पद को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 19 और 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है या दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। मेरे मित्रों, यहां पर लिखा हुआ है कि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई है, या हम यूं कहें इसमें क्या बड़ाई की बात है। पत्रस के युग में दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। अपराध करके धीरज से दुख उठाने पर परमेश्वर आपको नहीं सराहेगा। कभी कभी आपकी परेशानियों के उत्तरदायी आप स्वयं ही होते हैं। मुझे किसी ने बताया कि उसने शेयर बाजार में पैसा लगाया था और वह लूट गया है। अब यदि वह कष्ट उठा रहा है तो परमेश्वर की दृष्टि में वह सराहनीय नहीं है। इसलिए यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, पलट कर वार करो। मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरी प्रतिक्रिया होती है, परंतु मैं अब परमेश्वर को बदला लेने देता हूं। जी हां, मैं सीख रहा हूं कि कैसे अपने आप को नियंत्रित रखना है। वह मुझसे कहीं अच्छा काम करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 11 और 12 पद में प्रभु यीशु कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। पत्रस यहां पर कहता है कि यह सुहावना है। पत्रस प्रभु यीशु की चर्चा से अधिक दूर नहीं जाता है। यहां वह कहता है कि प्रभु यीशु के कष्ट हमारे लिए उदाहरण है। आगे वह कहता है, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 21 और 22 पद में लिखा हुआ है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु को 2 प्रकार के कष्ट उठाने पड़े थे। उसने धार्मिकता के कारण दुख उठाया और दूसरा संसार के पापों के कारण दुख उठाया। संसार के पापों के लिए उसका कष्ट उठाना हमारे लिए उदाहरण नहीं है, वह तो हमारी मुक्ति है। इसे हम स्वीकार करते हैं। जी हां, हम इसकी नकल नहीं कर सकते। उसने नासरत में उपहास और गलतफहमी का दुख सहा था, जिसका वर्णन भजन संहिता 69 में है। उसकी सेवा का वृतांत लिखते समय सुसमाचार के लेखक धार्मिकता के कारण उसके कष्टों का वर्णन करते हैं। जब हम अपने विश्वास के कारण दुख उठाते हैं तो प्रभु यीशु का उदाहरण हमारे सामने है। पहला पत्रस 2 अध्याय के 23 पद में आगे हम देखते हैं, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। मेरे प्रियो, उसने बदला लेना अपने स्वर्गीय पिता के हाथ में छोड़ दिया। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 19 पद में पौलुस कहता है, हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें कि वह न्याय करे, वही बदला लेगा। परंतु कई बार हम स्वयं से ही बदला लेने के लिए योजना बनाते हैं और अवसर को ढूंढते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि बदला लेना हमारा नहीं परमेश्वर का काम है, और जब वह बदला लेगा तो वह सही रीति से अपने न्याय के अनुसार लेगा। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं, अगले पद में प्रभु यीशु संसार के पापों के लिए कष्ट उठाता है। पहला पत्रस 2 अध्याय के 24 पद में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। मेरे मित्रों, यह उदाहरण हमारे अनुसार हेतु नहीं है। हम तो अपने ही पाप नहीं धो पाते हैं, तो संसार के पाप कैसे धोएंगे? पत्रस हमारी मुक्ति की चर्चा कर रहा है और कहता है, हम पापों के लिए मरकर, जी हां, यही हमारी दशा है। तब वह कहता है कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। किस बात की चंगाई, किसके बारे में कहता है? जब प्रार्थना करने में प्रचारक कहता है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, तो वह इस पद का नहीं, यशाया 53 अध्याय उसके 5 पद का संदर्भ देता है। पत्रस स्पष्ट करता है कि यह चंगाई पापों की है। मेरे प्रियो, मैं मानता हूं कि प्रभु यीशु एक महान चंगा करने हारा था, परंतु पापों से चंगा करने वाला था। मनुष्यों में वैद्य इस रोग का उपचार नहीं कर पाते हैं। पत्रस द्वारा यशाया 53 अध्याय उसके 5 पद का संदर्भ देना प्रकट करता है कि यशाया शारीरिक रोगों की अपेक्षा पाप के रोग के विषय में कह रहा था। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 25 पद में हम आगे पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। मेरे मित्रों, मनुष्य चाहे उधार प्राप्त हो या उधार से वंचित, उस भेड़ को कहा गया है, अर्थात मनुष्य एक भेड़ है और भेड़ की तुलना की गई है। तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, यह भी यशाया नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 6 पद का संदर्भ है। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबको अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मेरे प्रियो, हम सब अपने अपने मार्गों पर चल रहे थे, जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जी रहे थे, और हम पाप की दलदल में फंसते चले जा रहे थे। परंतु यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मेरे प्रियो, मसीह के कष्ट इस अध्याय का अंतिम विषय है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए कष्ट उठाया और हमारे पापों के लिए हमारे स्थान पर मरा, हमारे बदले में मरा, और इसलिए आगे हम देखते हैं, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यह सच है कि एक समय हम पाप में मरे हुए थे, परंतु प्रभु यीशु हमारे पापों के बदले में मरा, जिसकी कीमत मुझे और आपको चुकानी थी, प्रभु यीशु ने चुका दिया और मुझे और आपको बचा लिया, और यही कारण है कि हम उसके पास वापस लौट आए हैं। मेरे प्रियो, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 3 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 3 में पत्रस कहता है कि कष्टों के कारण विश्वासी के जीवन में मसीही आचरण उत्पन्न होता है। यह आचरण घर में तथा कलीसिया में प्रकट होता है। तो आइए हम देखते हैं घर में आचरण यानी चाल चलन। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों। ध्यान दीजिए, पद 1 अध्याय 2 के साथ यह जोड़ता है, अलगाव और आचरण यानी कि चाल चलन एक साथ चलते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में भी हम घर में पत्नियों के चाल चलन को देखते हैं, परंतु पत्रस यहां पर भिन्न परिस्थिति की चर्चा करता है। पौलुस विश्वासी पति पत्नी से कह रहा है जो आत्मा से भरे हुए हैं, क्योंकि इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 18 पद में वह आत्मा से भर जाने की बात कहता है। आप आत्मा से भर कर क्या करते हैं? इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 पद में पौलुस कहता है कि पत्नियां अपने अपने पति के अधीन रहे जैसे प्रभु के अधीन, और तब 5 अध्याय के 22 पद में वह पतियों को निर्देश देता है कि वे अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करें। पौलुस एक विश्वासी परिवार से आग्रह कर रहा है। तब हम आगे देखते हैं कि किसी भी परिस्थिति में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी को प्रधान होना पड़ता है। विवाहित जीवन में पति प्रधान है, पत्नी को पति के अधीन रहना है, परंतु बच्चों के समान आज्ञाकारी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी पत्नी पहला बच्चा है, इसलिए उसे एक बच्चे के समान आज्ञा मानना है, और यही कारण है कि वे आज्ञा के ऊपर आज्ञा अपनी पत्नी को लोग देते रहते हैं। मेरे प्रियो, यह नियम नहीं है। हमने देखा है कि अधीन रहना स्वेच्छा का काम है। पौलुस के कहने का अर्थ है, यह पुरुष तुमसे बहुत प्रेम करता है, अतः इसके अधीन रहो या इसको प्रतिक्रिया दिखाओ। मैंने जब भी किसी के विवाह का अनुष्ठान में भागी होकर के लोगों को बधाइयां दी, तो बहुत से लोग डरते हैं और कांपते हैं, और मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए और सोचता भी हूं। मैंने उन्हें जो कहा उसका संक्षेप में वर्णन करना चाहता हूं। विवाह के 3 पक्ष होते हैं। पहला, शारीरिक, जिसकी संसार बहुत चर्चा करता है। आपके प्रेम के योग्य एक पत्नी होगा। सौभाग्य की बात है कि आपको अच्छी पत्नी मिले। विश्वासियों के लिए यौन संबंध एक अनमोल, सुहावना और अद्भुत एहसास होता है। मेरे विचार में केवल विश्वासी ही इस संबंध का परिपूर्ण आनंद ले सकते हैं। जब मेरा विवाह हुआ, तब मेरी पत्नी अपने आप को एक सेवक के योग्य पत्नी नहीं समझती थी, अतः मैं उसे एक मित्र के पास ले गया और उसके भय उसे सुनाए और उससे पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकें भी दी। मैं उनकी बात कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि जब वह सभाओं में प्रचार करके घर आते हैं, तब वे सहायक सेविका के रूप में अपने आप को पाती हैं और वह मेरी प्रतीक्षा में रहती हैं। मेरे प्रियो, एक स्त्री से भेंट करना चाहता हूं जो मेरी पत्नी है, जिसे मैं प्रेम कर सकता हूं। वही है जिससे मैं सब कुछ कह सकता हूं। मैं सबके साथ सब कुछ नहीं कह सकता। अतः शारीरिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पारिवारिक जीवन के लिए। अब हम देखते हैं दूसरा पक्ष है मानसिक संबंधों का। पति पत्नी को एक ही काम में आनंद लेते देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। एक बार प्रचार क्षेत्र में हमने देखा कि एक 50 वर्षीय दंपत्ति सुबह एक साथ दौड़ लगाने जाते हैं और रात में एक साथ टहलने के लिए जाते हैं। वे एक साथ काम करने में आनंद लेते हैं। पति पत्नी के स्वाद अलग अलग हों तो उनका संबंध स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है। आज अनेक दंपति ऐसे हैं जो अपनी अपनी रुचि के कारण एक दूसरे से दूर रहते हैं। यह कैसी त्रासदी है। मेरे प्रियो, आज इस पर मुझे और आपको भी विचार करने की आवश्यकता है। आइए अब हम देखते हैं तीसरा पक्ष, आत्मिक संबंध। यह केवल विश्वासियों के लिए है। पति पत्नी को एक साथ वचन पढ़ना है और प्रार्थना करना है। समस्या परेशानी, दुख, कष्ट आदि सब एक साथ परमेश्वर के चरणों में डालने हैं। आप दो धागे तोड़ सकते हैं, परंतु तीन को तोड़ना आसान नहीं है। यदि एक भी अटूट रहे तो विवाह स्थिर रहेगा, परंतु यदि तीसरा भी किसी ने तोड़ दी तो विवाह का सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे विवाह की आशा बहुत कम होती है। मेरे प्रियो, अब यदि स्त्री एक ऐसे पुरुष से विवाह करे जो प्रभु यीशु को नहीं जानता और नहीं मानता है, सबसे पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी अविश्वासी से विवाह करके वह समस्या में पड़ जाएगा या पड़ जाएगी। धर्मशास्त्र में ऐसा विवाह वर्जित है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 22 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल ना चलाना। आज अनेक गधे और बैल एक साथ जुते हुए हैं। यह एक भारी भूल है और यही कारण है कि विवाह सफल नहीं हो पाता है। मुझे याद है एक बार एक युवती ने आकर मुझसे कहा, मेरा मंगेतर विश्वासी नहीं है, वह यीशु पर विश्वास नहीं करता है, परंतु मैं उसे मसीह में जीत लूंगी। मैंने उससे कहा, क्या तुमने उसे जीत लिया है? उसने कहा, नहीं, वह तो मेरे साथ आराधना में भी नहीं आता है। मैंने उससे कहा, तुम्हारा सबसे अधिक प्रभाव उस पर उस समय है, विवाह के बाद वह समाप्त हो जाएगा। आप उसे वचन नहीं सुना पाएंगी, आप उसके साथ रहना आरंभ कर देंगी और वह बड़ी सावधानी से आपको देखता रहेगा। यदि आप इस समय उसे आराधना में नहीं ला सकती हैं तो आप समस्या में हैं। मैंने उनका विवाह करने से या कराने से इनकार कर दिया। मैं विश्वासी और अविश्वासी का विवाह नहीं करता हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई इस प्रकार से विवाह करे। मैं इसे अनुचित मानता हूं। वह किसी और पास्टर के पास विवाह के लिए चली गई। 2 वर्ष पश्चात वह रोती हुई मेरे पास आई, क्योंकि उनमें तलाक हो गया था। मेरे मित्रों, उनका विवाह तो आरंभ से ही पूर्व इस दिशा में अग्रसर था, परंतु यह विवाह सफल नहीं हुआ, क्योंकि यह विवाह शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति थी, असमान जुए में जूतना था। यहां ऐसी ही दुर्भाग्य की स्थिति है। पत्नी विश्वासी है और पति अविश्वासी है। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्नी विवाह के पश्चात प्रभु यीशु की अनुयायी बन गई या बन गई थी। क्या उसे अपने घर में प्रचारक बनकर अपने पति को सुसमाचार सुनाना होगा? नहीं, उसे अपने पति के अधीन ही रहना है। यह आज्ञा नहीं, स्वेच्छा का काम है। वह अपने पति को घर का मुखिया माने। यदि उसका पति उसे शराब पिलाए तो क्या उसे पीना चाहिए? मेरे विचार में पत्नी को पति के अधीन रहने के कट्टर पक्षधर भी नहीं कहेंगे कि वह ऐसा करे, परंतु आज ऐसा परामर्श देने वाले लोग हैं। एक बार एक ऐसी ही पत्नी को किसी प्रचारक ने परामर्श दिया कि वह अपने पति के अधीन रहकर उसकी आज्ञा माने, और उस पत्नी ने ऐसा ही किया। परिणाम यह हुआ कि डॉक्टरों ने उसे मानसिक चिकित्सा का परामर्श दिया। उसने एक दिन मेरा रेडियो कार्यक्रम सुना तो वह मेरे पास आई। मैंने उससे कहा कि पत्रस के कहने का अर्थ यह नहीं था। पत्रस कहता है कि पत्नी पति के अधीन रहकर उसे मसीह में जीतने का प्रयास करे। मैंने उससे पूछा कि उसका पति यदि उससे बैंक लूटने को कहेगा तो क्या वह ऐसा करेगी? उसने कहा कि प्रचारक तो उसे ऐसा करने का परामर्श नहीं देगा। मैं कहता हूं कि उसका अधीन रहना उसकी इच्छा से है। परमेश्वर यह नहीं कहता है कि पत्नी अपने पति के साथ पाप करे या ऐसा संदिग्ध काम करे कि उसकी गवाही खराब हो। मेरे प्रियो, विश्वासी पत्नी को अविश्वासी पति के साथ बहुत सावधानी से जीवन बिताना होगा। उसका प्रचार कोई लाभ नहीं देगा। इसलिए लिखा है कि तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन द्वारा खींच जाए। दूसरे शब्दों में वह अपना पवित्र जीवन द्वारा निःशब्द प्रचार करे। इसमें तो अधीन न रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मेरे प्रियो, यहां पर स्पष्ट है कि आप अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपने अविश्वासी पति को विश्वास में ला सकते हैं। और उसी प्रकार यदि पत्नी अविश्वासी है तो पति अपने विश्वास के आचरण को दिखाकर अपनी पति को विश्वास में ला सकती है। और यह इसीलिए संभव होगा क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने जीवन को जिएंगे। मेरे प्रियो, यह हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है कि हम पारिवारिक जीवन में इन बातों को स्वीकार करें कि हम अन्य जाति या अन्य विश्वासी से शादी ना करें जो प्रभु यीशु को नहीं मानते हैं। आज हमारे बहुत सारे जवान भाई बहन अपने मार्ग से भटक रहे हैं। वे ऐसे स्थानों में जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन के खिलाफ या आज्ञा को ना मानकर उन कार्यों को कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप वे नाश हो रहे हैं, परिवार नाश हो रहा है। मेरे प्रियो, आइए आज हम इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांचें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारी सहायता करे ताकि मेरा परिवार, आपका परिवार सुरक्षित रहे। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस वचन के द्वारा आपने अपने जीवन में आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
तू सदा याद रखना।